एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Now
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे हृदयों को खोल दे और बुद्धि दे, तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, कि हम तेरे वचनों को समझ सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे संवाद को तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का संवाद का शीर्षक है तीन स्वर्गदूतों के संदेश। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से शेष लोगों के विशेष कार्य को रेखांकित करती हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 12 के तीन स्वर्गदूतों के संदेश शेष लोगों की घोषणा को प्रकट करते हैं, जो सुसमाचार के सत्य की पूर्ण और अंतिम पुनर्स्थापना करेगा। इन तीन संदेशों में मसीह की वापसी से ठीक पहले दुनिया भर में फैले हुए भयानक शैतानी धोखे के लिए परमेश्वर के उत्तर शामिल हैं। प्रकाशित वाक्य 13 का 3, 8 और 14 से 16 संसार के लिए परमेश्वर के आखिरी अनुरोध के तुरंत बाद मसीह फसल काटने के लिए लौटता है। प्रकाशित वाक्य 14 का 14 से 20 पहले स्वर्गदूत का संदेश। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7। पहला स्वर्गदूत दुनिया के लिए एक अनंत सुसमाचार ले जाने के लिए परमेश्वर के शेष लोगों का प्रतीक है। यह सुसमाचार परमेश्वर के अनंत प्रेम का वही शुभ समाचार है, जिसकी घोषणा प्राचीन भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों ने की थी, इब्रानियों 4:2। शेष लोग एक अलग सुसमाचार प्रस्तुत नहीं करते हैं, न्याय को देखते हुए वे अनंत सुसमाचार की पुष्टि करते हैं कि पापियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जा सकता है और वे मसीह की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश दुनिया को पश्चाताप करने के लिए कहता है। यह सभी को परमेश्वर का भय मानने या श्रद्धा देने और उसे महिमा या सम्मान देने के लिए बुलाता है। हम इस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे और हम अपने शब्दों और कार्यों में परमेश्वर को सम्मान या महिमा दे सकते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, यीशु ने कहा। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:8 में। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण तौर से उसकी महिमा करें। पौलुस लिखा है, इसलिए अपनी देह और आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर के हैं परमेश्वर की महिमा करो, 1 कुरिन्थियों 6:19-20। तथ्य यह है कि उसके न्याय का समय आ गया है। पश्चाताप करने के लिए बुलाए जाने की तत्कालिकता को जोड़ता है। प्रकाशित वाक्य 14:7 में न्याय शब्द यूनानी क्रिसिस का अनुवाद करता है। न्याय करने का कार्य न्याय का दंडादेश क्रीमा नहीं, यह न्याय की पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें दिव्य न्याय सभा के समक्ष लोगों का दोषारोपण, जीवन अभिलेखों की जांच, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय और अनंत जीवन या मृत्यु की सजा का प्रावधान शामिल हैं। हम देख सकते हैं मत्ती 16:27, रोमियो 6:23 और प्रकाशित वाक्य 22:12। न्याय समय का संदेश सभी धर्म त्याग पर परमेश्वर के न्याय की घोषणा भी करता है, दानियल 7:9-11 और 26 तथा प्रकाशित वाक्य 17 और 18। न्याय समय का संदेश विशेष रूप से उस समय की ओर इशारा करता है जब स्वर्गीय पवित्र स्थान में अपनी महायाजकीय सेवकाई के अंतिम चरण में मसीह अपने न्याय के कार्य में प्रवेश करता है। यह संदेश सभी से सृष्टिकर्ता की आराधना करने का आह्वान भी करता है। यह लोगों को सृष्टिकर्ता की सच्ची आराधना की ओर ले जाता है, एक ऐसा अनुभव जिसमें उसकी सृष्टि के स्मारक का सम्मान करना शामिल है। प्रभु का सातवां दिन सब्बत, जिसे उसने सृष्टि में स्थापित किया और 10 आज्ञाओं में पुष्टि की। इसलिए पहले स्वर्गदूत का संदेश दुनिया के सामने मसीह सृष्टिकर्ता और बाइबल के सब्बत के दिन के प्रभु को पेश करके सच्ची आराधना की बहाली का आह्वान करता है। यह परमेश्वर की सृष्टि का चिन्ह है, एक ऐसा चिन्ह जिसे उसके सृजित प्राणियों के विशाल बहुमत द्वारा उपेक्षित किया गया है। सौभाग्य से सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले इस संदेश की घोषणा इतिहास के उस चरण में शुरू हुई जब चार्ल्स डार्विन की प्रजाति की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 के प्रकाशन से विकासवादी दर्शन को एक बड़ा बढ़ावा मिला। पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रचार विकासवाद के सिद्धांत की प्रगति के खिलाफ सबसे बड़ा बचाव है। अंत में यह आह्वान परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था के सम्मान की बहाली को दर्शाता है, जिसे पाप के पुरुष द्वारा रौंदा गया है, 2 थिस्सलुनीकियों 2:3। केवल जब सच्ची आराधना बहाल हो जाती है और विश्वासी परमेश्वर के राज के सिद्धांतों को जीते हैं, तभी परमेश्वर की महिमा हो सकती है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश। गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है, प्रकाशित वाक्य 14:8। प्रारंभिक इतिहास से बाबुल शहर परमेश्वर की अवज्ञा का प्रतीक था। इसका गुंबद धर्म त्याग का स्मारक और विद्रोह का केंद्र था, 11:1-9। लूसीफर या शैतान इसका अदृश्य राजा था, 14:4-12। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह मानव जाति पर शासन करने के लिए बाबुल को अपनी महायोजना का माध्यम बनाना चाहता था। पूरी बाइबल में परमेश्वर के शहर यरूशलेम और शैतान के शहर बाबुल के बीच का संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। प्रारंभिक मसीही शताब्दियों के दौरान जब रोमी यहूदियों और मसीहों दोनों पर अत्याचार कर रहे थे, यहूदी और मसीह साहित्य ने रोम शहर को बाबुल के रूप में संदर्भित किया। बहुत से लोग मानते हैं कि पत्रस ने रोम के लिए एक उपनाम के रूप में बाबुल का प्रयोग किया था, 1 पत्रस 5:13। उसके धर्म त्याग और उत्पीड़न के कारण सुधार और सुधार के बाद के युग के अधिकांश प्रोटेस्टेंटों ने रोम की कलिसिया को आत्मिक बाबुल, प्रकाशित वाक्य 17 के रूप में संदर्भित किया, जो परमेश्वर के लोगों का शत्रु था। प्रकाशित वाक्य में बाबुल दुष्ट्री बेशियाओं की माता और उसकी अशुद्ध पुत्रियों को संदर्भित करता है, प्रकाशित वाक्य 17:5। ये सभी धर्म त्यागी धार्मिक संगठनों और उनके नेतृत्व का प्रतीक है। हालांकि यह विशेष रूप से पशु और उसकी मूरत के बीच महान धर्म त्यागी धार्मिक गठबंधन को संदर्भित करता है, जो प्रकाशित वाक्य 13:15-17 में वर्णित अंतिम संकट को लाएगा। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश बाबुल के धर्म त्याग की विश्वव्यापी स्वभाव और उसकी डराने वाली शक्ति को यह कहते हुए उजागर करता है कि उसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। बाबुल की मदिरा उसकी विधर्मी शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। बाबुल राज की शक्तियों पर अपनी झूठी धार्मिक शिक्षाओं और नियमों को विश्वव्यापी रूप से लागू करने का दबाव बनाएगा। उल्लेखित व्यभिचार बाबुल और राष्ट्रों के बीच, धर्म त्यागी कलिसिया और नागरिक शक्तियों के बीच अवैध संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवैध संबंध का परिणाम दुखद घटना है। यहूना पृथ्वी के रहने वालों को झूठी शिक्षाओं के साथ मतवाले हुए देखता है और बाबुल खुद पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाला है, जो उसके अशास्त्रीय सिद्धांतों को स्वीकार करने से और उसके अधिकार के अधीन होने से इनकार करते हैं। प्रकाशित वाक्य 17:2-6। बाबुल गिर जाता है क्योंकि वह पहले स्वर्गदूत के संदेश को अस्वीकार कर देता है। सृष्टिकर्ता में विश्वास के द्वारा धार्मिकता का सुसमाचार। जैसे जैसे अंत निकट आएगा, दूसरे स्वर्गदूत के संदेश की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश, जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु का विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:9-12। पहले स्वर्गदूत का संदेश अनंत सुसमाचार की घोषणा करता है और सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की सच्ची आराधना की बहाली का आह्वान करता है, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। दूसरा स्वर्गदूत आराधना के सभी मानवीय रूप से उत्पन्न रूपों के खिलाफ चेतावनी देता है। अंत में तीसरा स्वर्गदूत पशु और उसकी मूरत की पूजा करने के खिलाफ परमेश्वर की सबसे गंभीर चेतावनी की घोषणा करता है। सभी जो विश्वास के द्वारा धार्मिकता के सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं अंततः ऐसा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13:1-10 में वर्णित पशु कलिसिया राज्य संघ है, जो कई शताब्दियों तक मसीह दुनिया पर हावी रहा और पौलुस द्वारा पाप के पुरुष 2 थिस्सलुनीकियों 2:2-4 और दानियल द्वारा छोटा सिंह के रूप में वर्णित किया गया था। दानियल 7:8-20 तथा 8:9-12। पशु की मूरत धर्म त्यागी धर्म के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है जो तब विकसित होगा जब कलिसियाएं सुधार की सच्ची भावना को खो चुकी होंगी और अपनी शिक्षाओं को दूसरों पर लागू करने के लिए राज के साथ एकजुट होंगी। कलिसिया और राज्य को एकजुट करने में वे पशु के लिए एक आदर्श मूरत बन जाएंगी। धर्म त्यागी कलिसिया जिसने 1260 वर्षों तक सताया, इसलिए इसका नाम पशु की मूरत है। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश बाइबल में सबसे गंभीर और भयानक चेतावनी की घोषणा करता है। यह प्रकट करता है कि जो लोग पृथ्वी के अंतिम संकट में मानवीय अधिकार के अधीन हैं, वे परमेश्वर के बजाय पशु और उसकी मूरत की आराधना करेंगे। इस अंतिम संघर्ष के दौरान दो अलग अलग वर्ग विकसित होंगे। एक वर्ग मानव युक्तियों के सुसमाचार की वकालत करेगा और पशु और उसकी मूरत की आराधना करेगा, जिससे अपने ऊपर सबसे गंभीर निर्णय लाएगा। दूसरा वर्ग इसके स्पष्ट विपरीत सच्चे सुसमाचार के द्वारा जीवित रहेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा और यीशु का विश्वास रखेगा। प्रकाशित वाक्य 14:9-12। तीसरा संदेश दुनिया के ध्यान को अनंत सुसमाचार और सच्ची आराधना की बहाली के परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार करने के परिणाम की ओर निर्देशित करता है। यह उपासना के संबंध में लोगों की पसंद के अंतिम परिणाम को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कोई चुनता है उसमें दुख शामिल होगा। जबकि दोनों विकल्पों में दुख शामिल होता है, लेकिन उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। सृष्टिकर्ता के उपासक अजगर के घातक प्रकोप से बचेंगे और मेमने के साथ सियोन पर्वत पर खड़े होंगे। प्रकाशित वाक्य 14:1-7:2-4। दूसरी ओर पशु और उसके मूरत के उपासक परमेश्वर का पूर्ण क्रोध प्राप्त करते हैं और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में मर जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 9, 10 और 20 का 14। प्रत्येक व्यक्ति को चुनना होगा कि किसकी आराधना करनी है, या तो विश्वास के द्वारा धार्मिकता के चुनाव को प्रकट किया जाएगा जब कोई उस आराधना के रूप में भाग लेता है जिसे परमेश्वर ने समर्थन दिया है, या कर्मों द्वारा धार्मिकता के प्रभावी चुनाव को प्रकट किया जाएगा जब कोई उस आराधना के रूप में भाग लेता है जिसे परमेश्वर ने मना किया है लेकिन जिसे पशु और उसकी मूरत आज्ञा देती है, एक मानव निर्मित आराधना। सभी कलीसियाओं में परमेश्वर के बच्चे हैं, परंतु शेष कलीसिया के माध्यम से वह एक संदेश की घोषणा करता है, अर्थात अपने लोगों को धर्म त्याग से बाहर बुलाकर उसकी सच्ची आराधना को पुनर्स्थापित करना है और उन्हें मसीह की वापसी के लिए तैयार करना है। मसीह के शीघ्र आगमन और उससे मिलने के लिए तैयार होने की आवश्यकता की ज्योति में परमेश्वर की तत्काल करुणामय पुकार हम में से प्रत्येक के पास आती है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं, कहता है प्रकाशित वाक्य 18:4-5। तो आइए भाइयों और बहनों, प्यारे परमेश्वर के सच्चे रास्ता में आए और उसके पीछे चले, परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करे और परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर तू हम पर दया करता है, तू हमें बुलाता है कि हम तेरे ज्योति में तेरे सच्चाई में चले। हम सबों को मदद कर पिता, तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति दे कि हम सही चीज को चुने और तेरे सही रास्ता में चलने सके। पिता मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे रास्ता में चलने के लिए अगुवाई कर, मदद कर और सहायता कर। तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को आशीषित कर पिता और तेरे राष्ट्र के लिए त्याग कर। कभी यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।